प्रिय भाई हो बहनों, नमो बधाय, जय भीम। So I'm very glad to celebrate with you the founding of the Indian Republic.
आपके साथ में इस गणतंत्र दिवस की स्थापना के उपलक्ष्य में मैं बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ।
Of course, it's very significant to you as Indian citizens.
एक भारतीय होने के नाते ये दिन आपके लिए काफी महत्व का है।
Your whole nation should celebrate this day very joyously.
और संपूर्ण देश इस दिवस को बड़े आनंद के साथ में मना रहा है।
But it's particularly significant to us as sons and daughters of Dr. Babasaheb Ambedkar.
लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुत्र और पुत्री होने के नाते ये दिन हमारे लिए काफी महत्व का है।
Because the constitution that was enacted today was his dream.
बाबा साहब का जो सपना था आज के दिन साकार हुआ था या वो मतलब क्रियाशील हुआ था।
The constitution was adopted on the 26th of November 1949.
1950 में ये जो संविधान है इसको अपनाया गया था।
But it was put into effect on this day in 1950.
और आज के दिन इसको लागू किया गया था।
It became the way in which Indians lived together.
और ये इसी के माध्यम से जो भारतीय हैं वो अपना जीवन व्यतीत करने वाले थे।
And the preamble that you've just heard is a very important statement of what it is to be an Indian.
एक भारतीय होने के नाते जो जिस प्रस्तावना का अभी हम लोगों ने उच्चारण किया है वो किस बात के लिए है ये इसमें बताया गया।
And just going through it myself this morning, I was thinking there's a lot in this preamble alone.
और सुबह सुबह जब मैं इसका इसके विस्तार में गया था या इसको मैं पढ़ रहा था तो उस समय मुझे लगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है।
It says, we the people of India.
We मतलब इसमें कहा गया कि हम भारतीय।
That means that every Indian citizen symbolically undertook this act.
एक प्रतीकात्मक रूप में प्रत्येक भारतीय ने इसको इसका स्वीकार किया।
At that time, the Constituent Assembly was elected by democratic franchise.
उस समय लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से जो अपनी संविधान सभा का जो गठन किया गया था।
And so all of those who are of voting age participated in the creation of that assembly.
और जो भी उस असेंबली जो भी उस सभा में थे उन लोगों ने सब उसमें अपना सहयोग दिया था।
And so that what Dr. Ambedkar created and what was adopted by the Constituent Assembly was the will of the whole people of India.
और जो कुछ बाबा साहब ने बनाया था उनकी जो दृष्टि थी और जिसको उस सभा में सभा ने अपनाया था वो सभी भारतीय लोगों के लिए लिए था।
And they resolved at that time to constitute India into a sovereign democratic republic.
और उस समय उसमें बताया गया था कि ये जो भारत है इसको हम लोग एक संप्रभुता इस दृष्टिकोण से बना रहे हैं।
In 1976, the words socialist and secular were added.
और 1996 में उसमें सामाजिक और लोकतांत्रिक इन शब्दों को जोड़ा गया।
But at the time, in 1949-1950, the constitution read a sovereign democratic republic.
1949 उसमें संप्रभुता लोकतांत्रिक ये शब्दों का समावेश किया गया था।
So yes, sovereign, what does that mean?
और संप्रभुता का अर्थ क्या होता है?
That means having control over themselves.
उसका अर्थ होता है कि हम खुद पर नियंत्रण करें।
The British had been the sovereign power in India before that.
उसके पहले मतलब जो अंग्रेजी राज्य था उसका शासन यहाँ पर था भारत।
My ancestors.
और वो मेरे पूर्वज थे।
I have some ancestors who were in India.
मेरे जो पूर्वज थे वो भारत में थे।
Most English people have some ancestors who spent time in India.
उस समय
Most English people have some ancestors who spent some time in India. But on the 25th of January 1950, the English Queen, or the English King at that time, was the sovereign of India. On the 25th of January, the English King was the sovereign.
Raja.
But on this day, the Indian people became the king.
लेकिन इस दिन जो भारतीय लोग हैं वो इसके राजा बने.
So that's the significance of sovereign.
और इस जो संप्रभुता है इसका यही अर्थ है.
But then, Baba Sahib put this word democratic.
और बाबा साहब ने इसमें लोकतांत्रिक शब्द का समावेश किया.
So it became a republic, a democratic republic.
और इसमें धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक इस शब्द का समावेश किया गया.
And yes, it became a republic.
और इस प्रकार वो लोकतंत्र बना.
In other words, again, it's sovereign. It's governed by its own people.
और दूसरे शब्दों में ये जो संप्रभुता है अर्थात मतलब यहीं के लोगों ने यहाँ पर अपना राज्य प्रस्थापित किया.
So Dr. Ambedkar, with the will of the Constituent Assembly, the will of the people of India, instituted India as a free democratic republic.
तो इस प्रकार जो संविधान सभा थी और यहाँ के लोगों की इच्छा थी उसके अनुसार इस देश का गठन किया गया.
And we know that Baba Sahib had a deep feeling for democracy.
और आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब के मन में लोकतंत्र के प्रति काफी गहरी भावना थी.
And he thought of it as something more than a system of voting.
और ये जो हमारी जो चुनाव पद्धति है इससे भी कुछ ज्यादा उनके मन में था.
I don't think many people in India even understand this.
मुझे डर है कि क्या अधिकांश भारतीय लोग इसको समझते हैं.
People think of democracy as just the way in which you cast your vote.
लोग समझते हैं कि जिस प्रकार से हम चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसका अर्थ उतना ही उसका अर्थ है.
But Baba Sahib said democracy is to do with our attitude to each other.
बाबा साहब कहते हैं कि प्रजातंत्र अर्थात एक दूसरे के प्रति हमारी जो प्रवृत्ति है उससे संबंधित है.
When you live in a democracy, you have a sense that you're all citizens together.
जिस अर्थों से प्रजातंत्र जो होता है उसका अर्थ होता है कि हम एक दूसरे के संपर्क में जिस प्रकार रहते हैं.
When you live in a monarchy, you're all subjects of the king.
और जिस प्रकार राजा पद्धति होती है उसमें कोई राजा होता है और आप उसकी प्रजा होते हैं.
But in a democracy, you're all equally citizens together.
लेकिन प्रजातंत्र में आप सभी समान रूप से उसके सदस्य होते हैं.
And that means you have a certain sort of feeling for each other.
और इसीलिए एक दूसरे के प्रति हमारी कुछ भावनाएं होती है.
You have a feeling that your fellow citizens are your brothers and sisters.
और हमारी एक दूसरे के बारे में भाई और बहन इस प्रकार की भावना होती है.
You have some respect for them.
और एक दूसरे के प्रति हमारे में आदर का भाव होता है.
You feel that they have rights as you have rights.
और आपकी ऐसी भावना होती है जिस प्रकार उनके अधिकार है जिस प्रकार आपके अधिकार है उस प्रकार उनके भी अधिकार है.
You feel that they should be taken into consideration as you should be taken into consideration.
आपको ऐसा लगता है कि जिस प्रकार आपका आपको मतलब ध्यान में लिया जाना चाहिए वैसे उनका भी उनको भी ध्यान में लिया जाना चाहिए.
In a way you could say that you feel that they're part of your family.
दूसरे अर्थों में आप ऐसा महसूस करते हैं कि वो आपके एक परिवार के सदस्य हैं.
So for Baba Sahib, democracy was a very, very exalted vision.
तो इस प्रकार बाबा साहब का जो प्रजातंत्र की जो दृष्टि है वो बहुत ही व्यापक और विस्तृत.
It was something that was a very great significance to humanity.
और ये मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है.
And well, we have to say that it's still a very lofty vision.
और हम अभी ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत ही विशाल बहुत ही उच्च ऐसी दृष्टि है.
But like most lofty visions, we still have to achieve it.
लेकिन कितने उच्च कितनी उच्च दृष्टि हो उसको प्राप्त करने की आवश्यकता होती है.
And yes, Baba Saheb thought of this in putting this in the preamble. He put this as the vision for India.
और इसको प्रस्तावना में शामिल करके बाबा साहब ने लोगों के समक्ष इस दृष्टि को रखा है.
This is what India should be aiming at.
और इसका अर्थ यही है कि भारत किस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए.
And then he defined democracy.
और
he defined democracy.
उन्होंने इस प्रकार ये जो प्रजातंत्र इसकी परिभाषा की.
And he defined it in terms of justice, liberty, equality, and fraternity.
और उन्होंने इन चार शब्दों के माध्यम से उसकी व्याख्या की है.
India is a democracy when there's justice.
जिस प्रकार न्याय की बात आती है, तो वो भी इस प्रजातंत्र में शामिल है.
When there's liberty, equality, and fraternity.
समता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये भी उसमें इसका भी अंतर्भाव किया गया.
And the purpose of this democracy is to bring to all its citizens these four qualities.
और डेमो प्रजातंत्र का अर्थ ये है कि चारों जो गुण हैं उसको उसको इसमें समावेश करना है.
So that's what Baba Saheb built into the constitution.
और बाबा साहब ने जो संविधान की रचना की उसमें इनको शामिल किया इसके आधार पर संविधान.
India is founded on the idea of justice, liberty, equality, and fraternity.
और भारत की जो रचना की भारत का जो निर्माण किया गया है इन्हीं चार तत्वों के आधार पर उसकी रचना की गई है.
And all of these make democracy.
और ये सभी मिलकर प्रजातंत्र का निर्माण करते हैं.
But so that's what happened on this day in 1950.
लेकिन 1950 में क्या हुआ?
But something else happened as well.
और कुछ और ऐसा घटित हुआ.
A flag was adopted.
उसमें जो झंडा है उसका स्वीकार किया गया.
And a seal was adopted. An emblem was adopted.
उसमें जो चिन्ह है उसका स्वीकार किया गया.
So you know what the flag was.
और आप जानते हैं कि भाई ये जो तिरंगा झंडा है ये किस बात का द्योतक है.
Of course it's the three colors, the tricolor.
और आपको मालूम है कि उसमें तीन रंग हैं.
And in the middle of that is the Ashok Chakra.
और उसके बीच में अशोक चक्र विद्यमान है.
And you know what the emblem of India is.
और आपको मालूम है कि ये जो चिन्ह है ये किस बात का प्रतीक है.
It's the four animals from the Sarnath Ashok pillar.
और ये जो चार इसमें जो प्राणी बताए गए हैं वो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहां से लिए गए.
So this is very significant indeed.
और इसका अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा स्थान है.
The constitution is based on these principles in the preamble.
जिन सिद्धांतों पर मतलब इस संविधान की रचना की गई है वो उसमें विद्यमान है.
And the flag has at its center Ashok Chakra.
और ये जो तिरंगा झंडा है इसका जो केंद्र बिंदु है वो अशोक चक्र है.
And the official seal of India is the Ashok pillar.
और जो भारत की मुद्रा है राष्ट्रीय मुद्रा है वो अशोक चक्र है.
You know, over the Indian High Commission in London, there it is.
और जो भारत का
embassy. The representative office of India in London.
ऊपर ये लगा हुआ है.
There is the Ashok stump.
वहाँ पर ये अशोक स्तंभ लगा हुआ है.
Before you go in the door, you have to pass under that.
जैसे ही आप उस दरवाजे से भीतर जाते हैं, तो सबसे पहले सामना आपका इस अशोक चक्र से होता है.
From the roof, there's a flag. Flagstaff, and on that flagstaff, there is the Ashok Chakra.
वहाँ पर झंडा लगा हुआ है और उसमें अशोक चक्र है.
So, well, what's the significance of this?
इसका फिर महत्व क्या है?
Baba Saheb is so clever.
Baba Saheb बहुत ही चतुर थे चालाक.
He's built into India, into the symbols of India, the principles of the Dhamma.
उन्होंने भारत का जो निर्माण किया उसमें धर्म के सिद्धांत का अंतर्भाव किया.
The Ashok Chakra is a Dhamma Chakra.
अशोक चक्र जो है वो धम्म चक्र है.
It's the Dhamma shining out throughout the world.
और ये धम्म है वो संपूर्ण विश्व में चमक रहा है.
that those four animals on the Ashoka Stumbh, what are they? They're the supporters of the Dhamma Chakra. And well, they represent the strong urge to take the Dhamma out into the world.
It's
the lion. Well, you know, the lion is the king of animals. The Buddha said that when he, the Buddha, speaks, it's like the lion roaring. Yes, the Sihanad, he gives his Sihanad. And well, when the lion roars in the jungle, all other animals go silent. So the lion faces to the north. To the west, the bull faces. And the bull, of course, is a symbol of great strength. When a bull is charging, everybody gets out the way. You know, I've often noticed when you get a bull standing in the road, everybody moves right around it,
yeah?
And when it moves its horn, everybody backs away. So you need that sort of strength, that confidence to carry the Dhamma out into the world. And then to the south, the horse faces. And a horse is a symbol of strength again. But a horse is also a very sensitive, a very a subtle animal. I don't know whether any of you have ridden horses. I don't know whether anybody has ridden a horse. I know all men have to ride a horse at least once in their lives. Usually you see the man sitting on the horse with his great big turban on, looking very uncomfortable. But when I was a young boy, I used to do quite a lot of horse riding. They're very, very beautiful animals. Very, very sensitive. And you can very easily create a friendship with a horse, you could say. They're a very affectionate animal. But you have to relate to them in the right way. If you can create the right relationship with a horse, it will carry you anywhere. And once you can get a horse galloping, it's a wonderful feeling. So that the horse is a symbol of speed, of skill, of going somewhere.
Speed. Gati, yes. Gati or saga pratik hota hai.
Then an elephant.
Aur uske baad mein hathi.
I remember the first time I saw an elephant when I was in England.
Mujhe maloom hai ki pehli baar jab main England mein tha, us samay maine hathi dekha tha.
I've seen them in picture books and so on.
Aur maine usko photo mein dekha tha.
But one day I saw one in a zoo.
Aur ek din maine chidiya ghar mein dekha.
It's so impressive.
Huh?
So big. And I was just a little boy at the time. And so the elephant was to me like a big building. And so strong. And you know the way an elephant walks. It walks with such determination, such purpose. So strong.
So these
four animals are symbols of the strength, the courage, the determination that you need to practice the Dhamma and to carry it out into the world.
और दुनिया में अगर धर्म को ले जाना है तो आपको इन चार बातों की आवश्यकता होती है जिसमें साहस है सामर्थ्य है शक्ति है इन बातों की आवश्यकता होती है
and they're there at the heart of the Indian Republic
और ये भारतीय गणतंत्र के हृदय में ये बातों का समावेश किया गया
they were the symbols that were carved on the Ashok stump at Saranath
और सारनाथ के अशोक स्तंभ में ये जो चार जो प्राणी हैं इनको खुदा गया है
the place where the Buddha turned the wheel of the Dhamma for the first time
और ये वही स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था
so these symbols are at the heart of what it is to be an Indian
और ये सिंबल मतलब ये जो प्रतीक है ये भारतीय जो गणतंत्र है
And Baba Sahib, as it were, got the whole of India to commit itself to the highest human principles.
और बाबा साहब ने संपूर्ण भारतीय समाज को मतलब एक बड़े ध्येय के लिए समर्पित किया हुआ है.
The highest ideals India is committed to.
और ये बहुत ही उच्च ऐसे आदर्श हैं जिसके लिए भारतीय लोगों ने अपने आप को समर्पित किया
है committed to showing those ideals to the whole world
और ये ऐसे तीन ऐसे आदर्श हैं कि जिसको भारत ने जिसको समर्पित किया है जो जिसको दुनिया के सामने आपको रखना है
you are Indian citizens
आप भारतीय लोगों को रखना है
this is your duty
ये आपके अपने कर्तव्य हैं
to live up to the highest ideals that a human being can have
और ये मानवीय समाज के लिए जो अति उच्च ऐसे मूल्य हैं जिसके लिए हमें अपना जीवन समर्पित करना है
to live them with the strength the courage the confidence of a lion a bull a horse an elephant yeah
और इन चार प्राणियों में जो चार गुण बताए गए हैं इसके आधार पर ही हमको अपने जीवन की नींव रखनी है
so what are those ideals what are those principles
फिर ये जो तत्व हैं या जो सिद्धांत हैं इसका ये कौन से हैं
well they're there in your constitution
ये आपके संविधान में इसका समावेश है
जस्टिस
न्याय
इक्वालिटी
समता
लिबर्टी
स्वतंत्रता
एंड फ्रेटर्निटी
और बंधुता
एंड बाबा साहेब सेड दैट ही डिडंट गेट दीस प्रिंसिपल्स फ्रॉम पॉलिटिकल हिस्ट्री
और बाबा साहब का ऐसा कहना है कि उन्होंने ये राजनीतिक इतिहास से इन शब्दों को नहीं लिया हुआ है
आई डोंट नो whether यू नो दिस बट इन फ्रांस दीज वर्ड्स लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर वेरी फेमस दैट्स वेयर दे वर फर्स्ट यूज्ड
मुझे मालूम नहीं है कि आपको आपके शायद ध्यान में होगा ये जो तीन शब्द हैं ये फ्रांस में काफी प्रचलित हैं
इफ यू गेट अ कॉइन फ्रॉम फ्रांस वेल नाउ इट्स अ यूरो इट यूज्ड टू बी अ फ्रैंक
अगर आप आजकल खैर यूरो हैं लेकिन फ्रांस की जो मुद्रा है वो अगर आप लेते हैं
on that coin there will be the words liberté égalité fraternité
ये जो तीन शब्द बताया समता समता बंधुता वहां का अगर आप जो सिक्का लेते हैं उस पर इन तीन शब्द लिखे
but they're in French so liberté Égalité, fraternité. So another language now. And they're over every French, the police station, the courts, the mayor's building, the parliament house. Liberté, égalité, fraternité.
France, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं और जो भी राजकीय जो भी offices होते हैं वहाँ के वहां ऊपर आपको ये तीन शब्द लिखे हुए मिलते हैं
एंड दे वर फर्स्ट यूज्ड इन 1789 व्हेन द फ्रेंच पीपल गॉट रिड ऑफ देयर किंग
और 1700 1789.
But Baba Sahib said, I didn't get them from the French Revolution.
Baba Sahib kaisa kehna hai ki maine use France ki Rajya Kranti se nahi liya.
Where did he get them from?
फिर उन्होंने ये कहाँ से लिया?
He said, I got them from my master, the Buddha.
और कैसा कहना है कि जो मेरे गुरु हैं, भगवान बुद्ध, उनसे मैंने ये तीन शब्द लिए हुए हैं.
It's very important.
बहुत ही महत्वपूर्ण है.
Sometimes people ask why in TBMSG we put Baba Sahib below the Buddha.
और कभी-कभी लोग ऐसा पूछते हैं कि त्रिलोक के बौद्ध महासंघ में आप
Sorry, TBM. I said to you.
बाबा साहब का जो फोटो है वो नीचे क्यों रखते हैं? बुद्ध के नीचे क्यों रखते हैं?
Well, because you don't put the disciple above the master.
आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जो शिष्य है उसको आपके गुरु के ऊपर रखें.
And Baba Sahib said, my master, the Buddha.
और बाबा साहब क्या कहना है कि वो मेरे गुरु हैं.
So he learned liberty, equality, and fraternity from his master, the Buddha.
और बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता और बंधुता ये बुद्ध से सीखा है.
And he showed that by making sure that the Ashok Stump was the symbol for India.
Baba Sahib ne Ashok Stump se ye jo pratik hai ye liye hue.
And that the Ashok Chakra was at the center of the flag.
Aur ye jo Ashok Chakra hai ye aapke jhande ka kendra hai.
Not many Indians know this.
बहुत से भारतीय इसको जानते नहीं.
They don't know where their own principles come from.
और वो जानते नहीं कि ये जो तत्व आए हुए ये कहाँ से आए.
Never mind.
कोई बात नहीं.
We will tell them.
हमें उन्हें बताना है.
In time, they will all know.
जब समय आएगा वो सभी जान जाएंगे.
Because we've got some lions here.
निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ सिंह हैं.
We've got some bulls here.
और यहाँ पर कुछ बैल.
Some horses here.
और कुछ घोड़े हैं.
And some elephants are here.
और कुछ हाथी हैं.
So if we just take the Dhamma Chakra out into India, they will understand where liberty, equality, and fraternity come from.
और जब हम भारत के बाहर ले जाएंगे तब वो समझ जाएंगे.
So what is Baba Sahib saying when these principles don't, when he says they don't come from the revolution of France?
जब बाबा साहब कहते हैं कि ये फ्रांस की राज्य क्रांति से नहीं आए तब उन्हें वास्तव में क्या कहना होता है?
What is he saying when he says they don't just come from, they come from the Buddha?
जब वो कहते हैं कि भई ये बुद्ध की तरफ से आया तब उन्हें क्या कहना होता है?
He's saying they're not merely social ideals.
उनका ये कहना होता है कि भई केवल ये सामाजिक आदर्श नहीं है, सामाजिक तत्व नहीं है.
It's something, if you like, spiritual.
और आप ऐसा कह सकते हैं कि आध्यात्मिक है.
These principles are not just something that we agree amongst us.
और ये ऐसे कोई तत्व नहीं कि हम जिस पर सर्वसामान्य रूप से सहमत होते हैं.
They're deep in life itself.
वो आपके उनका आपके जीवन में वो गहराई से रचे बसे हैं.
They're deep in reality itself.
और जो सत्य है उसमें वो गहरे रचे बसे हैं.
If we understand the nature of reality, then liberty, equality, and fraternity are naturally the way we want to live and behave towards others.
ये जो सत्य है जीवन का, अगर हम इसको समझते हैं तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि ये जो तीन तत्व हैं उनका अंतर्भाव बहुत बहुत ही गहराई से इसमें हुआ है.
This is a very very important point to grasp hold of.
बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा पॉइंट है, मुद्दा है.
Baba Sahib's vision for India was not merely a social one.
बाबा साहब का जो भारत का भारत के लिए जो दृष्टि थी वो केवल सामाजिक नहीं थी.
His vision was based upon the nature of reality itself.
बाबा साहब की जो दृष्टि थी वो अस्तित्व का जो सत्य है उस पर आधारित थी.
It was based upon what it is to be a human being, what it is to be alive.
एक मनुष्य होने के नाते उसका क्या अर्थ है, उस बात पर वो आधारित थी.
If we really understand what it is to be alive, what it is to be a human being, then naturally we will behave on the basis of liberty, equality, and fraternity.
अगर हम इस बात को समझ पाएं कि एक मानवीय मानव होने का क्या अर्थ होता है तो निश्चित रूप से हम लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता इन तत्वों पर आधारित अपना जीवन व्यापन करेंगे.
What is it to be a human being?
Human being होने का क्या अर्थ है?
That's a big question. I hadn't meant to ask that question, but I've now asked it. What is it? What is it that we are in being here? We're not merely the sons and daughters of our parents. We have this precious awareness. We have this precious human consciousness. We have this responsibility for ourselves. To be a human being is to be responsible for your own destiny. What we will be tomorrow is based on what we do today. To be a human being is to be responsible for your own actions. Yes, the principle of karma is the way in which our experience unfolds. So we are responsible for our own futures. We're all going to die. That's what it is to be a human being. Is to be here for a while and then to go. So yes, that's part of what it is to be a human being. Is to be subject to pain, subject to pleasure. That's what it is to be a human being. It's to have the capacity to become a Buddha. To be a human being is to be able to be more than a human being. If we really understand what it is to be a human being, then we will naturally experience our own liberty. And we will grant other people that liberty. We'll understand that everybody else is the same as us. They're all alive, they all will die. They're all conscious. They all feel pleasure, they all feel pain. They're all responsible for their own karma. So we're equal. We all can become the Buddha. So yes, we will accept that in this respect we're all the same. And because we're all the same in this way, we will sense that we're brothers and sisters. So Baba Sahib said these principles are deep in life itself.
बाबा साहब का कहना है कि ये जो तीन तत्व हैं ये मानवीय जीवन में बड़ी गहराई से समाये हुए हैं।
If we understand the nature of life, liberty, equality, and fraternity follow quite naturally.
अगर हम इस जीवन का जीवन के स्वभाव को अगर हम समझ सकते हैं तो उसमें ये तीन तत्वों का समावेश ये भी हमें समझ में आता है।
But they're in the constitution.
और संविधान में
But we need to understand where they go, where they come from rather.
लेकिन हमें ये जानना है कि भाई वो कहाँ से आए हुए हैं.
They come from the Dhamma.
वो धर्म से आए हुए हैं.
They come from the nature of existence.
और वो अस्तित्व के अस्तित्व से आए हुए हैं.
And it's only really when we begin to understand this that liberty, equality and fraternity can flower in India.
और जैसे ही हम इसको समझने की शुरुआत करते हैं वैसे ही समता स्वतंत्रता बंधुता उसकी भारत में आने की शुरुआत हो सकती है।
It's only when the Dhamma Chakra really is in the center of India, that liberty, equality and fraternity will come. And the only way liberty, equality and fraternity will come to India is if we bring it there.
और तभी सही दृष्टिकोण से समता संतरा बंधुत्व बंधुत्व इस देश में आएगा जब हम उसको लाने की शुरुआत करेंगे।
If we're the lion, the bull, the horse, and the elephant,
और तभी ये चार प्राणी या जो चार गुण हैं ये भी आएंगे।
Then we can bring the lion, then we can bring the Dhammachakra right into the heart of India.
और तभी सही दृष्टिकोण से भारत के केंद्र में या हृदय में हम धर्मचक्र को
So it's a very, very deep theme indeed. And on this particular day, we need to reflect on that. It's not just a question of raising the flag and thinking that India is great and will beat Pakistan at cricket.
और ऐसा नहीं कि हम आज के दिन केवल झंडा लहराएं और क्रिकेट के पाकिस्तान और भारत के बारे में कुछ कहें।
And you need to be careful because the English cricket team is getting better and better. और
ध्यान रखना है कि आजकल जो अंग्रेजी क्रिकेट टीम है वो अच्छी अच्छी हो रही है।
It's not just about nationalism.
ये केवल एक राष्ट्रीयता इससे संबंधित नहीं है।
This is one of the problems in the modern world.
और यही आज के आधुनिक समाज में की एक समस्या है।
One nation is against another nation.
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरोध में खड़ा है।
Pakistan versus India.
पाकिस्तान बनाम भारत।
India versus China.
और भारत बनाम चीन।
Russia versus America.
और रसिया बनाम अमेरिका।
Britain versus France.
और ब्रिटेन जो है वो फ्रांस के विरोध में है।
This is nationalism.
ये सभी राष्ट्रीयवाद हैं।
And it creates so much tension, so much problem in the world.
और इसी की वजह से दुनिया में बहुत सी समस्याएं और तनाव पैदा होता है।
You know, India and Pakistan fighting over Kashmir.
और आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं।
So many people died.
और बहुत से लोग इसमें हताहत होते हैं, मरते हैं।
If people had just followed what Baba Saheb said, there wouldn't be all this problem.
और अगर बाबा साहब के लिए अगर लोग रखते हैं तो ये समस्या नहीं होगी।
बाबा साहब said, well, let the people of Kashmir decide.
बाबा साहब ने कहा कि भाई कश्मीर के लोगों को उसका फैसला करने दीजिए।
Let those in Jammu, if they want to go to India, let them go to India. If those in the Kashmir Valley go to Pakistan, let them go. Those in Ladakh, let that be a separate state for Buddhists.
बाबा साहब ने कहा कि भाई वो जम्मू के लोगों को फैसला करने दीजिए कि भाई वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या वो लद्दाख कहाँ जाना चाहता है।
So yes, nationalism creates so much trouble in the world.
और ये जो राष्ट्रवाद है इसने दुनिया में बहुत सी इसकी वजह से दुनिया में बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं।
But Baba Saheb said, no, this nation is founded on high human ideals.
बाबा साहब ने लेकिन इस देश की जो स्थापना है वो बहुत ही उच्च ऐसे मूल्यों पर की है।
And let those ideals not just be for India, but for the whole world.
और केवल ये जो उच्च मूल्य हैं ये भारत के लिए नहीं तो संपूर्ण विश्व के लिए हैं।
You know, the world is always dominated by one power or another.
और आपको मालूम है कि दुनिया की जो सत्ता है कभी किसी किसी न किसी सत्ता के संपर्क मतलब प्रभुत्व में रही है।
In 19th century it was Britain.
19वीं शताब्दी ये अपने ब्रिटेन अंग्रेज के हुकूमत के अंतर्गत था।
In Britain ruled 25% of the world's land area.
और आपको मालूम है कि जो ब्रिटेन था वो 25% जो दुनिया का भूभाग है उस पर राज्य करता था।
The 20th century was the century of America.
और ये जो 20वीं शताब्दी है ये अमेरिका के प्रभुत्व वाली है।
America dominated not by its weapons but by dollar.
और केवल अपने हथियारों की वजह से ही अमेरिका दुनिया पर राज्य प्रस्थापित नहीं कर रहा है बल्कि उसका जो डॉलर है।
So who's going to rule now? Who's going to dominate the world now?
अब किसका शासन प्रस्थापित होना चाहिए?
India or China?
भारत या चाइना का?
Well, China is coming up very fast.
और चाइना जो चीन है वो बहुत ही तेजी से उभर रहा है।
But well, Britain dominated the world. It did some good, did a lot of harm.
मतलब ब्रिटेन ने दुनिया पर राज्य किया कुछ अर्थों से ठीक था लेकिन कुछ अर्थों से ठीक नहीं था।
America did a lot of good, a lot of harm.
अमेरिका ने भी कुछ अच्छा किया है और लेकिन बहुत सा कुछ बुरा किया है।
So what will India do when it's India's turn?
भारत की बारी है, इसने क्या करना चाहिए.
India's turn will come.
भारत का भी अभी समय आने वाला है.
I think the next one is going to be China, but after that, India will come.
हो सकता है कि भाई अगले इसमें चाइना है, लेकिन भारत का भी जो समय है वो आएगा, निश्चित रूप से आएगा.
India will be the dominant nation at some point.
और कभी न कभी भारत भी दुनिया पर एक अपना शासन प्रस्थापित करेगा.
So what will India do to the world?
फिर भारत ये क्या करेगा?
Will it just make everybody watch Bollywood movies?
क्या भारत है वो जो पिक्चर है बॉलीवुड है उसका प्रचार प्रसार करेगा?
Will it make everybody just eat मिर्ची?
क्या वो दुनिया के लोगों को मिर्ची खिलाएगा?
Will it make everybody well, you know, dress in saris or whatever,
yeah. Yeah, go.
The women, of course, yeah.
Mahilaon ko sari ka agrah karega.
And will it just divide the world into caste?
Ya jati ke aadhar par duniya ko baatega?
Or will it take liberty, equality, fraternity and justice to the world?
Ya phir kya समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय इन तत्वों की प्रस्तावना करेगा?
That's not a question for me.
ये प्रश्न मेरा नहीं है.
I'm not an Indian.
मैं भारतीय नहीं.
My passport doesn't have the lion, the elephant and the bull and the horse.
क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है उस पर ये चार जो प्राणी है वो नहीं है.
It has the lion and the unicorn.
उस पर जो लायन है वो यूनिकॉर्न.
Yeah, it's a horse with a horn on the top of its head. Yeah.
वो ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर मतलब सिंह निकला हुआ है.
But it doesn't have the Ashok Chakra in the center of its flag.
लेकिन उसका जो झंडा है उसके केंद्र में अशोक चक्र नहीं है.
This is the question for you.
ये प्रश्न आपका है.
You are Indian citizens.
क्योंकि आप भारतीय नागरिक हैं.
It's up to you what happens when India dominates the world.
जब दुनिया भर भारत का प्रभुत्व स्थापित होगा तब क्या क्या करना है ये आप पर निर्भर करता है.
Will it just be like Britain? Will it just be like America? Some good, some bad?
क्या ये अमेरिका और ब्रिटेन की तरह होगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा?
Or will it be as Baba Saheb wanted it?
या फिर बाबा साहब जैसा चाहते थे वैसा होगा.
Spreading the principles of justice, liberty, equality and fraternity everywhere.
दुनिया भर में स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय इन तत्वों को फैलाएगा.
That's up to you.
ये आप पर निर्भर करता है.
And well, you have to do it by really understanding the basis for liberty, equality, fraternity and justice.
और ये तभी होगा जब आप इन चारों तत्वों को अच्छे से समझ पाएंगे.
You have to see that those principles are based in reality.
और आपको मालूम है कि चार तत्व जो हैं ये सत्य के कोख में छुपे हुए हैं.
They're based in the Dhamma.
और जिसका जो आधार है वो धम्म है.
If you understand that, then you can really create the India that Baba Saheb instituted on the 26th of January 1950.
अगर आप इनको सही दृष्टिकोण से समझ पाए तभी बाबा साहब ने जो इस संविधान की रचना की है आप उसको सही दृष्टिकोण से प्रस्थापित कर पाएंगे.
It's up to you to bring those principles to life.
और ये आप पर निर्भर करता है कि इन चारों तत्वों को जीवन में उतारना ये आप पर निर्भर करता है.
At the moment, India doing some good, some bad.
तो हो सकता है कि जैसा अमेरिका और बाकी उसके बारे में लिखा कुछ अच्छा कुछ बुरा ऐसी होगा.
But if it's to be a real force for good in the world, it's up to you.
और दुनिया में कुछ अच्छा होता है ये आप पर निर्भर है.
So it's important for us to remember these things on this day.
और यही सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी याद आज के इस अवसर पर की जानी चाहिए.
It's not just a day for rejoicing in our nation.
ये केवल इस ये दिन इसलिए नहीं है कि केवल हम उसकी प्रशंसा करें.
India is great, Pakistan is bad.
भारत महान है और पाकिस्तान बुरा है.
It's not a day for that sort of nationalism.
और ये दिन जो है वो केवल राष्ट्रवाद का, इस प्रकार की राष्ट्रीयता का नहीं है.
It's a day for remembering the high principles that India was founded upon.
और जिस जिन बहुमूल्य सिद्धांतों के आधार पर भारत की रचना की गई है उस सिद्धांत को याद करने का दिन है.
And the dream that this very, very great man, Dr. Baba Saheb Ambedkar, had for India.
और बाबा साहब का जो बहुत बड़ा सपना था भारत के बारे में उस बात का ये दिन है.
I think it'll still take a long time for India to understand that dream.
और मुझे लगता है कि इसके लिए इस सपने को समझने के लिए ये जो उनका सपना था इसको जानने के लिए एक लंबा समय लगेगा.
For so many years, Baba Sahib was almost forgotten in India. For so many years, Baba Sahib was forgotten in India.
हाँ, बहुत सारे वर्षों में इस भारत में बाबा साहब को भुला दिया था.
He was only declared Bharat Ratna in 1990. Yes, so many years after he died.
Yes, Bharat Ratna, उनको 90 में घोषित किया गया बाबा साहब.
But slowly, India is waking up to Baba Sahib.
लेकिन धीरे धीरे ये जो भारत है बाबा साहब के बारे में जागरूक हो रहा है.
Slowly, the world is waking up to Baba Sahib.
और धीरे धीरे दुनिया भी या विश्व भी संपूर्ण विश्व भी बाबा साहब के बारे में जागरूक हो रहा है.
You used to just hear Gandhi, 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 Gandhi.
पहले सब Gandhi, 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 Gandhi चल रहा था.
But you do hear now Baba Sahib in the West too.
और पश्चिम में भी बाबा साहब उभर रहे हैं.
People are beginning to realize there was a far greater Indian.
और आज दुनिया के लोग भी इस बात को जानने की शुरुआत करने की बाबा साहब जो हैं वो एक बहुत ही बड़े भारतीय ऐसे महापुरुष थे.
And Indians will slowly wake up to what they have in their own founding constitution.
और इस संविधान की रचना में क्या बहुमूल्य तत्व है इसके बारे में धीरे धीरे भारतीय जागरूक हो रहे हैं.
I don't know of another nation in the world that is founded on such deep principles.
मुझे मालूम नहीं कि दुनिया का कोई भी दूसरा देश है कि जिसकी प्रतिस्थापना इन बहुमूल्य आदर्शों पर स्थापित हुई है.
You know, the Americans have as their motto, "In God we trust."
अमेरिका उसमें ऐसा लिखा है कि ये जो ईश्वर है हम उस पर विश्वास करते हैं.
I don't even need to say anything. the British crest says Dieu et mon droit, which is French for God and my rights. But India has the Dhamma Ashok Chakra at its heart. So never forget this. Wake India up to it.
और भारत को जागरूक कीजिए.
Most of you are NNBY.
बहुत से NNBY के सहयोगी हैं.
This is your duty.
ये आपके अपने कर्तव्य हैं.
This is what you're doing.
और यही आपको करना है.
Never forget it. Never stop.
कभी भी आप रुकिए मत और करते रहिए.
So maybe I've said enough.
मैंने बहुत कुछ कहा है.
Never forget those four animals.
आप कभी भी इन चार प्राणियों को मत भूलिए.
Never forget the lion.
आप सिंह को मत भूलिए.
Roar like lions.
और सिंह की तरह गर्जना कीजिए.
Never forget the bull.
और बैल को भी मत भूलिए.
Nothing can stop a bull. Everything fears a bull. Have that confidence, that courage.
और सांड को कोई भी रोक नहीं सकता. आगे बढ़ते रहता है.
You know, a horse can ride so fast, can go so fast everywhere.
और जो घोड़ा होता है वो आपको बहुत दूर तक सवारी करवा सकता है.
Have that speed, that skill.
और उसमें वो गति होती है और वो कुशलता होती है.
And yes, an elephant, nothing can stop.
और हाथी को भी कुछ कोई भी रोक नहीं सकता है.
So be unstoppable like an elephant.
उसको रोका नहीं जा सकता है.
And yes, if you do that, Baba Sahib's dream will come true.
और अगर आप इसको करते हैं तो बाबा साहब का जो सपना है वो साकार हो सकता है.
नमो बुद्धाय. जय भीम. जय भारत.